اتفضل. رند رند کوئی آبجیکشن لیا تو بن جاتا ہے.
جے رادھا مادھو کنج بہاری. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानेन अतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामय्यं ददापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद, इनका शीर्षक है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, श्लोक संख्या नंबर 27। सभी लोग मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए। श्री ययाति रुवाच अतृप्तो अस्मि अधय कामान् अतृप्तो अस्मि अधय कामानां ब्रह्म दुहितरि स्मते ब्राह्मण दुहितरि स्मते यस्याताम यथा कामम् व्यत्यस्याताम यथा कामम् व्यस्या यो अभिधास्यति व्यस्या यो अभिधास्यति अतृप्तोऽस्मि अथ अदय कामानाम् अतृप्तोऽस्मि अधय कामानाम् ब्राह्मण द्वितरि स्मते व्यत्यस्य यथाम यथा कामम् यस्सा यो अभिधास्यति।
माता जी
शब्दार्थ इस प्रकार है, श्री याति उवाच, राजा याति ने कहा, अतृप्त असंतुष्ट अस्मि मैं हूँ, अध आज तक कामानाम अपनी विषय वासनाओं को तृप्त करने के लिए, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, दुहितरी पुत्री के संबंध में स्म भूतकाल में ते तुम्हारी व्यत्यस्तम व्यत्यस्ताम अधान प्रधान करो, यथा कामम जब तक तुम विषयी हो, व्यसा युवावस्था जवानी से, या अभिधास्यति जो तुम्हारी वृद्धावस्था से अपनी युवावस्था को बदलने के लिए इच्छुक हो, जो तुम्हारी वृद्धावस्था से अपनी युवावस्था को बदलने के लिए इच्छुक हो। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, राजा याति ने कहा, हे विद्वान पूजनीय ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हारे अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तात्पर्य, जब राजा याति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई है, तो शुक्राचार्य ने देखा कि यह तो उसकी पुत्री के अहित में है। याति वृद्धावस्था में रहने लगे क्योंकि तब उसकी पुत्री की भोग इच्छा पूरी नहीं होगी, अथवा शुक्राचार्य ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपने बुढ़ापे को किसी की जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत किया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देकर ययाति को बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो ययाति देवयानी के साथ संभोग कर सकता है। इसके पहले के श्लोक इस प्रकार है, 33 नंबर से, यदुं च तुरवसुं चैव देवयानि व्यजायत द्रुयुं चानु च पूर्वं समृष्ट वर्षा पर्वणि गर्भ संबंध आश्रुय भारतुर विज्ञेय मानिनि देवयानि पितुर गेहं ययु क्रोध विमूर्चित प्रियम अनुगत कामी वचोभिर उपमंत्रयन न प्रसादयितुम ए शेके पाड़ा संभा हनादि अनादि भी। अनुवाद इस प्रकार है, देवयानी ने यदु तथा पूर्वशु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुहु अनु तथा पुरु को जन्म दिया। जब गर्विशील देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उनके पति से गर्वित है तो वो क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर चली गई। चूंकि ययाति अत्यंत विषयी तथा अथवा वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिए, उसने उसे पकड़ कर मीठे शब्द कहे तथा उसके पाँव धर कर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध से उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्रीकामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अथवा मैं शाप देता हूँ तुम पर बुढ़ापा तथा असक्तता को आक्रमण को, जिससे तुम कुरूप बन जाओ। तो यहां पर ययाति महाराज के जीवन की कथाओं से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ययाति महाराज जो कि एक क्षत्रिय होने के नाते उनके पास उनकी दासी के रूप में जो कि शर्मिष्ठा जब आई, जब उन्होंने अपने प्रस्ताव को जब ययाति महाराज के समक्ष रखे, तो ययाति महाराज जो कि क्षत्रिय होने के नाते वो किसी के प्रस्ताव को नकार नहीं सकते, तो स्त्रियों के दिए हुए प्रस्ताव को क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि उसको पूरा करें। तो वैसे उन्होंने ये सोचकर उसके प्रस्ताव को स्वीकारा, ये सोचकर कि ये भगवान की इच्छा है, और ऐसे सोचकर उन्होंने देवयानी को भी उनको भी एक गर्भ प्रदान किया। जब ये खबर उनकी पत्नी देवयानी को जब पता लगा कि शर्मिष्ठा जो है वो मेरे पति के द्वारा उनके ही वही उनके पिता है जो कि उनके गर्भ में शर्मिष्ठा के गर्भ में जो संतान है वो किसी और का नहीं ययाति महाराज का है, जैसी ये सुने तो देवयानी जो कि गर्वित होकर वो क्रोधित हो गई, और क्रोधावेश में वो सीधे शिकायत करने के लिए शुक्राचार्य के पास चली गई, शुक्राचार्य जो कि उनके पिता। तो ययाति महाराज ने बहुत उनको समझाया, लेकिन उनके तरह तरह के समझाने के बावजूद भी, उनके मीठी बोली बोलने के बाद भी, यहां तक कि उनके चरण को पकड़ लिया, फिर भी देवयानी उनकी बात को तिरस्कृत करते कर सीधे वो शिकायत कर दी, और उनके ससुर ययाति महाराज के ससुर शुक्राचार्य उन्होंने जब ये ययाति महाराज के विषय में जब ऐसी क्रियाओं को सुना तो बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधावेश में उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम तुरंत ही कुरूप बन जाओ, तुम्हें अपने यौवनता के प्रति इतना गर्व है तो तुम यौवन से वृद्ध हो जाओ, और ऐसे श्राप दे दिए। ययाति महाराज ने उन्होंने शुक्राचार्य को उनके अहित के विषय में बताया कि आपने जो मुझे श्राप दिया ये आपको कैसे नुकसान है। तो कैसे कहते हैं, तो कहते हैं कि आपकी जो पुत्री अभी भी युवावस्था में है तो मेरी पत्नी है, अगर पत्नी युवावस्था में है और पति अगर बूढ़ा हो गया तो तालमेल जमेगा नहीं, और इसीलिए आपकी पत्नी को कम से कम मैं खुश रखने के लिए, आपकी पत्नी को तो मैं कम से कम संतुष्ट रखने के लिए मुझे आप इस प्रकार के श्राप मत दो। तब शुक्राचार्य का दिमाग चमका कि हाँ मैंने कुछ श्राप कुछ ज्यादा ही दे दिया, मुझे इतना नहीं देना चाहिए था। तब शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, तुम अपनी युवावस्था को अपने किसी भी पुत्र, अपने वृद्ध अवस्था को किसी भी पुत्र के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम, अपनी वृद्ध अवस्था को किसी को भी देकर युवावस्था आप ले सकते हैं। तो वैसे तुम वापस पुनः युवक बन जाओगे। तो यहां पर ययाति महाराज वो यहां पर ये बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति काम इच्छाओं से रहित नहीं होता तब तक वो व्यक्ति जीवन के जो वास्तविक जो लक्ष्य है जो कि विरक्ति जो कि संन्यास इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। विरक्ति की अवस्था तब उसे प्राप्त होगी जब वो काम इच्छाओं से रहित होता है। तो वैसे जब व्यक्ति जब काम इच्छाओं से जब बुरी तरह पीड़ित होता है तो उनके लिए ये मार्ग बताया गया है और वो है विवाह का मार्ग। लेकिन उस विवाह में भी उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस अवस्था से बाहर निकलना। तब जाकर व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे कमल लोचन प्रभु बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी के पैर में अगर कांटा घुस गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे की आवश्यकता है। तो जब वो दूसरे कांटे से ये कांटा अगर निकल गया तो दोनों कांटा क्या करना है, संभाल के तो नहीं रखना है, क्या करना है, फेंक देना है। तो वैसे ही जब व्यक्ति जब काम इच्छाओं से जब पीड़ित रहता है तो उनके लिए शास्त्र की विधि के अनुसार उसको अनुमति दिया गया है कि वो विवाह के तौर पर वो अपने काम इच्छाओं को संतुष्ट करते हुए अंततः गत्वा इस अवस्थाओं को परित्याग करते हुए उसे विरक्ति के मार्ग पर आना ही है। यह है वर्णाश्रम धर्म का इस प्रकार पद्धति। जैसे कि 25 साल तक उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए और फिर अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो वो फिर 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है और फिर 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद फिर उसे वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में उसे अपनी पत्नी के साथ अनेक अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना पड़ता है, जिस भ्रमण में उनका अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। और ऐसे वो अभ्यास करते हुए अपने पत्नी के साथ रहते हुए भी उसके विरक्ति का अनुभूति प्राप्त कर वो अपनी पत्नी को अपने पुत्र के हवाले छोड़कर वो अंततः गत्वा संन्यास ले लेता है। तो वैसे वो अपने जीवन को वास्तविक सफलता में प्रवेश करता है, यानी कि वो भगवान के कृष्ण प्रेम को वो प्राप्त कर सकता है। कब? जब वो अपने काम इच्छाओं को वापस भगवान की भक्ति में बदल देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जितने भी प्रतिचिन्हों में जितने भी चलने वाले हैं उन लोगों के लिए एकमात्र यही प्रधान है और वो क्या है, महाप्रभु भक्त जने वैराग्य प्रधान। तो जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं उन लोगों के लिए एकमात्र अंतिम उद्देश्य यही है और वो क्या है, वैराग्य। और इसलिए यहाँ पर ययाति महाराज रो रहे गिड़गिड़ा रहे कि अभी तक मेरे हृदय का वो कांटा नहीं निकला है। तो मेरे हृदय का वो कांटा नहीं निकलने के कारण आपने तो पहले ही यहां तक कि आपकी पुत्री का भी नहीं निकला है तो आपने तो बड़ा गलती कर दिए मुझे श्राप देकर। अब हम हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि भगवत गीता के जो कि तीसरे अध्याय में कहते हैं कि आवृत्तम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन से दुष्पूरेण अनिलेन च। कि ये काम ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति को अंतिम समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ती है। कैसे? तो उदाहरण देते जैसे कि अग्नि में घी डालने के बराबर। अग्नि में घी डालने से अग्नि बंद नहीं होती है, कुछ समय के लिए दिखाई पड़ता है कि हाँ हो गया, लेकिन तुरंत ही वो वापस अपने उग्र स्वरूप को प्रकट करती है। तो वैसे ये जो काम इच्छा जो है वास्तविक में सारे आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जीव के लिए ये सबसे बड़ा वैरी है या दुश्मन है, सबसे खतरनाक दुश्मन इस प्रकार कहते हैं, नित्य वैरी यानी कि सनातन दुश्मन है। तो इसीलिए इस सनातन दुश्मन को जब तक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता तब तक उसके लिए नुकसानदायी माना गया है। इसलिए भगवत गीता में सातवें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भरतर शभा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो संतान प्राप्ति के लिए जो काम इच्छा है वो वास्तविक में कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूं। तो यहां पर भगवान अपने विभूति को प्रकाशित करते हुए ये समझाते हैं कि किस प्रकार काम इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो वो कैसे, एकमात्र कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति के लिए। तो यहां पर ययाति महाराज की जो प्रार्थना जो है वो कोई गलत नहीं है। तो ययाति महाराज जो जिस तरह के से वो शुक्राचार्य को प्रार्थना कर रहे हैं वो वास्तविकता में विचारणीयवान है, क्योंकि ययाति महाराज वही विचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना किया। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण को शरण नहीं ग्रहण करता तब तक वो ऐसे तरह तरह के काम इच्छाओं के वर्षा से बच नहीं सकता। इसलिए उससे भगवान के दिए हुए छत्र छाया में आने के बाद ही वो ऐसे तरह तरह के विषयों से वो बच सकते हैं, जैसे कि इंद्र के द्वारा जो कि भरपूर वर्षा होने के बाद भी, इतना भयानक वर्षा होने के बाद भी इंद्र जो था वो सोच रहे थे कि बस अब मैं पूरे ब्रज भूमि को पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन 7 दिन लगातार उन्होंने भयंकर वर्षा बरसाया, मगर कृष्ण के छत्र छाया में जो कोई थे वो सभी पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसे ही प्रार्थना उद्धव जी करते हैं भगवान कृष्ण से, कहते तापत्रेण अभितस्य घोरे संताप्य माना भवात् पनिष्यात् पश्यामि न अन्यत् चरणं तवांग्री द्वंद्वात् पत्रा अमृताभिवर्षात्। कहते हैं कि तापत्रेण अभितस्य घोरे, ये जो संसार है इस संसार में तरह तरह के क्लेश जीव के ऊपर केवल वर्षा बरसाते जा रहे, लेकिन ऐसी वर्षाओं में अगर बारिश से बचना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, छाते की। तो कहते हैं द्वंद्वात पत्रात, आपका जो चरण कमल है वो है छाता है, आपके दो जो चरण दो दो जो युगल चरण कमल है ये वास्तविक जीव के वो आध्यात्मिक छाता है, जिस छाते से ऐसे तरह तरह के क्लेश रूपी वर्षा जब पड़ती भी है तो भी उसे कुछ फर्क नहीं गिरता। तो छाता ऐसी वस्तु है जो कि वर्षा को नहीं रोकती, लेकिन वो छाता हमें धैर्य प्रदान करती है वर्षाओं में खड़ा रहने के लिए। ठीक इसी तरह जो तरह तरह के जो काम इच्छाओं की भी अगर वर्षा जब बरसती है तो वैसे वर्षाओं से बचने के लिए एकमात्र भगवान के छत्र छाया के द्वारा ही व्यक्ति बच सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि गोवर्धन के शरण में जिन जिन व्यक्ति ने शरण लिया, जो जो गिरिराज के शरण को ग्रहण किए, वो व्यक्ति पूरी तरह इस वर्षा से बच चुके थे। जैसे वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः भगवान गोपाम अह अंश तथा व्रजाक्षु यथो उपजोषम विशत गिरिगर्धम स गोधना। वो कहने लगे कि भगवान कहने लगे कि जितने भी गोप गण है सभी लोग आ जाओ, और हे माता अम्ब अंश तथा वर्जाक्ष, वो कहने लगे जितने भी ब्रज भूमि में जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। कैसे? तो कहते यथो उपजोषम, जैसे आपकी इच्छा है, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको शरण दे सकता हूँ। ये महत्वपूर्ण शब्द है। जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा भगवान के शरण ग्रहण करने की, तब तक उससे राहत नहीं मिलेगा। तो जब भगवान ने ये कहा कि आप सभी लोग स्वतंत्र हो, तो तब जाकर उन्होंने गिरिराज के शरण को ग्रहण किया। और जब गिरिराज के शरण को ग्रहण किया तो ऐसे कहा गया है कि गिरिराज के ऊपर और भी सारे पशु थे, और यहां तक कि उनके ऊपर ऐसे जोर से वर्षा गिरी, तरह तरह के आक्रमण इंद्र अपने बर्फ के द्वारा कर रहा था, अपने वज्र के द्वारा कर रहा था, लेकिन थोड़ा भी गिरिराज को असर नहीं पड़ा। यहां तक कि उनके ऊपर जो पशु चल रहे थे उनको भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। और ऐसी भयंकर वर्षा जो कि तूफान के साथ, और वो वर्षा जो कि अंतिम समय पर उपयोग किया जाता है जो कि संभारतक वर्षा, और वो संभारतक वर्षा इतना मोटा मोटा होता है पिल्लर के समान, और एकदम तेज धार होता है उसमें। तो मैं ये गोवर्धन देख रहा था तो ऐसे ही लग रहा था, ऊपर जो कंदील है वैसे ही दिखाई दे रहा है, और संभार तक वर्षा बूंद गिर रहा है इतना मोटा मोटा। तो वैसे मोटे मोटे बूंद जब एक के ऊपर पड़ा तो बस उसका उसका वहीं पर ही हरे कृष्णा हो गया। तो वैसे यहां पर वर्षा के द्वारा इतना भयंकर समस्या आने के बाद भी किसी को कोई असर नहीं पड़ा, या सभी लोग सुरक्षित थे, कुशल मंगल थे। 7 दिन लगातार उस पर्वत के नीचे, गिरिराज के नीचे सभी खड़े थे, भूखे प्यासे थे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी को ऐसे लगा कि 24 मिनट हुआ है, आचार्यगण ऐसे लिखते हैं। 7 दिन लगातार दिन रात खड़े रहने के बाद भी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि केवल 24 मिनट बीता है। और ऐसे इंद्र के साथ भगवान कृष्ण ने इस लीला में इंद्र के गर्व को खंडित करते हुए उन्होंने गिरिराज के यश को बढ़ाया। तो उसी लीलाओं पर हम थोड़ा नजर देंगे कि किस लिए इस प्रकार की लीला को भगवान ने संपन्न किया, इसका क्या कारण है, और इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसको हम थोड़ा नजर देंगे। तो कहा जाता है तत् अभिज्ञो अभि भगवान सर्वात्म सर्वदर्शन प्रश्रत्यात्वंतो प्रच्यात् वृद्धानंद पुरोगमम। तो कहते हैं कि हर वर्ष इस प्रकार इंद्र की पूजा होती थी, और जो इंद्र की पूजा में कभी कभी हर साल कोई कोई व्यक्ति मुखिया होकर उसके पूजा की सामग्री को या पूजा के मैनेजमेंट को संभालता था। तो इस वर्ष में नंद महाराज को इस पूजा के विशेष मुखिया के रूप में चुनकर अब सारे जितने भी सामग्री है सब उनके आज्ञा से सभी कुछ बनाया जा रहा है, इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। तब उस समय भगवान कृष्ण अपने गोपों के साथ आते हैं नंद महाराज के पास, और वो पूछते हैं कि ये सब किस लिए, ये सब किसकी तैयारी की जा रही है, ये किस कारण से ये सब किया जा रहा है। तो नंद महाराज कुछ कह नहीं सोचे कि बालक अब इनको क्या समझाऊं। नंद महाराज ने उस बात को टाल दिया। फिर भी कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये क्या कारण से, हालांकि यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वात्म सर्वदर्शना, वो जो भगवान सभी कुछ दर्शन कर सकते हैं, फिर भी सभी कुछ सभी के ज्ञाता है, लेकिन फिर भी यहां पर अज्ञानता की तरह वो अपने लीला में ये दिखा रहे कि मुझे कुछ पता नहीं। भगवान के पास कोई ऐसी बात नहीं है जो भगवान के पास नहीं छुपा है, जो कि भगवान सर्वव्यापी है, सभी स्थान पर उपस्थित है, हर दृश्य को देख रहे हैं। जैसे कि एक समय की बात थी कि एक बार गुरुजी अपने विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे कि भगवान सभी जगह पर उपस्थित है, और ऐसे कई दिन तक शिक्षा वगैरह देने के बाद उनके अब जाने का समय आ गया, लेकिन सारे विद्यार्थी खुश हो गए कि बस अगले दिन जाना है। और गुरुजी ने सारे विद्यार्थी का एक दिन पहले परीक्षा लेने के लिए तय किया, और क्या किया, सारे विद्यार्थी को एक फल दे दिया और कहा कि इसे जाकर तुम ऐसे स्थान पर खाना जहां पर भगवान कोई नहीं देखता हो, जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखता हो, ऐसे कहकर उनको सारे विद्यार्थी को कह दिया। तो सारे विद्यार्थी गए, कोई पेड़ के ऊपर छुप कर खा लिया, कोई गुफे के अंदर छुप के खा लिया, तो कोई अपने आंख बंद करके छुप के खा लिया, तो सभी सोचा कि बस हो गया, और सभी लौट कर आए। एक व्यक्ति नाराज होकर आ गया, बड़ा दुखी था कि मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया, और गुरुजी को आकर वो फल वापस देता है, गुरुजी मैं हार गया हूं, मुझसे ये फल खाया नहीं जा रहा। बोले क्यों? बोले गुरुजी आपने आदेश तो दिया था इसको छुप कर ऐसे स्थान पर खाना जहां कोई नहीं देखता हो, लेकिन मैं खा नहीं पाया, क्योंकि मैं जहां कहीं जाता हूं वहां पर मुझे ये दिखाई पड़ता है कि भगवान का नजर यहां पर भी है, और इसलिए मैं इसे खा नहीं पाया। तो गुरुजी ने कहा सारे विद्यार्थी फेल हो गए, ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि ये जान गया है कि भगवान हर स्थान पर उपस्थित है। तो वैसे भगवान सभी स्थान पर उपस्थित है, और फिर भी यहां पर बड़े महाकामान, यहां पर इस प्रकार भगवान कृष्ण बाल गोपाल वो पूछ रहे नंद महाराज से कि मुझे ये जानना है। महाकामान कहा गया, महाकामान यानी कि अभी बड़ा महान काम करने वाले, ये जानने के बाद, और वो पूछ रहे कि मुझे बताइए कि ये किस लिए किया जा रहा है, क्या कारण से किया जा रहा है। फिर भी नंद महाराज कुछ नहीं कहे, तो फिर नंद महाराज को कहने लगे कि देखिए वो जो साधु पुरुष होता है उनके जो जीवन होते हैं, उनके जीवन खुले किताब रहते हैं, उनके साधुओं के जीवन में कुछ छुपा हुआ वस्तु नहीं रहता है, कुछ सीक्रेट नहीं रहता है, सभी कुछ ओपन रहता है। तो ऐसे होने के बाद भी जो दुश्मन मित्र सबके प्रति समदृष्टि रखने के बाद भी आप मुझे इस प्रकार इस बात को क्यों छुपा रहे हो? क्या आप ये पूजा इसलिए कर रहे हो जो कि कुछ केवल एक धार्मिक चल रहा है पूर्व समय से, इसलिए कर रहे हो कि शास्त्र में लिखा गया है, किस लिए किया जा रहा है? वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि ज्ञात्वा अज्ञात्वा कर्माणि ज्ञानो अयम अनुतिष्ठति विदुष्य कर्म सिद्धि स्यात् यथा अनुविधो भवेत्। वह कहने लगे ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि, क्या आप ज्ञान पूर्वक कर रहे हो क्या अज्ञान पूर्वक कर रहे हो? क्योंकि बहुत लोग हैं जो धार्मिक कार्यकलाप बिना उसको समझदारी से केवल बस पूर्वज कर रहे, तो बस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कुछ पता नहीं। कुछ लोग हैं जो कुल देवता को इसी प्रकार लगे हैं पूजा में, लेकिन क्या उसके पीछे उसका क्या कारण है, किस लिए कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी पूजा जो चल रहा है, जैसे एक समय एक जो वो घर के जो बुजुर्ग थे दादाजी, उन्होंने यज्ञ हवन करने के लिए तैयारी किया, सारी सामग्री लेकर आया, तो उनका जो पोता था वो सब ध्यान से देख रहा था कि मेरे दादाजी क्या क्या कर रहे हैं। तो देखते देखते वो सब ध्यान दे रहा था, तो वहां पर उन्होंने दादाजी ने देखा, तो दादाजी को पुरोहित कहने लगा कि ये बिल्ली को संभालो, बहुत हैरान कर रहा है बिल्ली। तो दादाजी ने क्या किया, उस बिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने उस बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दिया, तो बिल्ली बेचारा यहाँ वहां भाग पाया, उसी के अंदर भटकता रहा और इस प्रकार यज्ञ सब हो गया। तो पूरा यज्ञ को बड़े ध्यान से पुत्र ने देखा, पोता ने देखा। अब जब पोते की बारी आई यज्ञ वगैरह करवाने का, तो उन्होंने भी सारी सामग्री यथारूप में लिया, सब कुछ किया। फिर लास्ट में याद आ रहे एक बात भूल गया, क्या? अरे वो टोकरी लेकर आओ, और टोकरी भी रखना, उसके अंदर बिल्ली भी रखना। लेकिन पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे, कुछ पता नहीं। तो वैसा जो पूजा पाठ यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई गति नहीं है। लेकिन जो समझदारी के साथ करता है यज्ञ हवन, जो कि शास्त्र के दिए हुए शिक्षा के अनुसार करता है, तो उसमें व्यक्ति को कर्म सिद्धि प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं कि स्वभाव तंत्र ही ज्ञान स्वभाव अनुवर्तते स्वभावस्थम इदम सर्वम स देवा सुर मानुषम। तो नंद महाराज ने ये जब सुना भगवान कृष्ण से, तो वो कहने लगे कि देखो, हम ये जो यज्ञ हवन कर रहे हैं, ये इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंद्र बादलों के द्वारा वर्षा बरसाता है, और जिस वर्षा से अन्न उत्पादन होता है, और जब अन्न उत्पन्न होता है तो उसको खाकर हम जीते हैं। तो हमारा पूरा जीने का जो व्यवस्था है वो इंद्र कर रहा है, और इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसको प्रसन्न करने के लिए ये कर रहे हैं। तब नंद महाराज कहते, जो इस प्रकार यज्ञ नहीं करता उसका जीवन पूरी तरह पतित हो जाता है, वो पूरी तरह पद भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। तब भगवान कृष्ण ने जब सुना तो कृष्ण कहने लगे, ऐसा है, लेकिन इंद्र का इसमें लेन देन क्या है? हमने तो सुना है शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो जब कर्म के अनुसार उसको जब फल मिल जाता है, तो इंद्र की पूजा क्या करना है? इंद्र तो वो सारे व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देने के लिए बाध्य है। तो हमें कर्म जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहां पर भगवान कृष्ण कर्म मीमांसा के सिद्धांत को व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक नास्तिक सिद्धांत है, लेकिन ये नास्तिक सिद्धांत भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो सारे ब्रजवासी बड़े ध्यान से सुन रहे कि कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे। तो कभी कभी नास्तिक सिद्धांत भी, वो भी कृष्ण भावनामृत बन सकता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने नास्तिक सिद्धांत को कहा, क्या कहा? अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, ये जितने भी लोग हैं ये सब आपस में मारेंगे और मर जाएंगे, तो ये जन्म लिया और मर जाएंगे, फिर क्या चिंता करना है? तो मरने तो वाला है, तो फिर मारने के लिए क्यों टेंशन ले रहे? वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोगों का कहना है कि हम सब केमिकल से आए, तो केमिकल से आए तो केमिकल में वापस चले जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मारने के लिए क्या डर है? तो वैसे वहां पर कृष्ण अर्जुन को नास्तिक सिद्धांत बता रहे, यहां पर भी नास्तिक सिद्धांत बता रहे। इसी प्रकार और एक जगह पर रामायण में भी नास्तिक सिद्धांत बताया है, जब प्रभु रामचंद्र जी जब वनों के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक ऋषि आ गए और कहने लगे, ये आप क्या कर रहे हो? तो रामचंद्र जी कहने लगे, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो वहां पर वो ऋषि ने प्रभु रामचंद्र जी को नास्तिक सिद्धांत बता रहे कि ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ये सब, वापस लौट जाओ। तो वहां पर वो नास्तिक सिद्धांत उपयोग कर रहे किसके लिए? प्रभु रामचंद्र जी की संतुष्टि के लिए। तो वैसे यहां पर भगवान कृष्ण भी कह रहे कि हम सब स्वभाव से बंधित हैं। अगर विद्यार्थी को एग्जाम लेने के लिए, अगर विद्यार्थी, जो कि टीचर का काम क्या है, विद्यार्थी का एग्जाम लेना, अगर विद्यार्थी नहीं है स्कूल में तो एग्जाम लेने वाला कोई होगा? तो टीचर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो टीचर किस प्रकार वो इंद्र के समान है? तो विद्यार्थी है ही नहीं, तो विद्यार्थी है इसलिए टीचर है। इसी तरह इंद्र भी अपने स्वभाव से बाध्य है और वो भी हमारे कर्म के उचित कर्म के अनुसार फल दे रहे हैं। तो इसलिए क्या श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ है। जैसे लोग कहते कर्म ही पूजा है, कौन सा कर्म वो नहीं पता, कर्म ही पूजा है। तो वैसे यहां पर भगवान कृष्ण छह सिद्धांत को व्यक्त कर रहे, इस सिद्धांत को समझाकर, जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाते। पहला तो वो बताते कि कर्म श्रेष्ठ है। दूसरा है वो समझा रहे कि स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ है। तीसरा बताते कि जो प्रकृति के जो तीन गुण है वो श्रेष्ठ है। फिर चौथा बताते हैं कि भगवान भी लोगों के कर्म पर निर्भर है और निर्भर होकर उनको वैसे फल प्रदान करते हैं। फिर पांचवा, भगवान स्वयं लोगों के कर्म में पूरी तरह वशीभूत है। और फिर छठा बताते हैं इसीलिए कर्म ही पूजा है। तो हे नंद महाराज, हम भी स्वभाव से बाध्य है, हमारे ऊपर भी स्वभाव का प्रभाव तो है। तो चार वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो हम आते जो कि ब्राह्मण का स्वभाव है जजन याजन पठन पाठन, और क्षत्रिय का स्वभाव है लोगों को रक्षा करना, और वैश्य का स्वभाव है कृषि गो रक्षा वाणिज्य गो रक्षा करना है। तो हमारे लिए अति मूल्यवान वस्तु कौन सा है? गाय है, गो रक्षा करना है। और एक गाय का संरक्षण कौन करता है? ये गोवर्धन करता है, जो कि गोवर्धन में इतने सारे घास वगैरह सब उगते हैं जिसको गाय खाती है, और खाकर वो जब हिष्ट पुष्ट होती है तो हमारा भरण पोषण होता है। तो हमारे लिए पूजनीय कौन हुआ? गोवर्धन। और इस प्रकार यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन की महिमा को समझाते हुए वो बताते कि हमें केवल पूजा करना है तो गोवर्धन का ही करना है, क्योंकि वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? गाय की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो पूजनीय है क्योंकि हम स्वभाव से बंधित हैं। तो भगवान यहां पर इनडायरेक्टली गाय को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये इसी बात को पुष्टि किया गया है पूतना लीला में, जहां पर जब भगवान कृष्ण ने जब पूतना का वध कर दिया, पूतना जो कि जमीन में मरी पड़ी थी, उसी समय भगवान कृष्ण को सारे गोपियों ने उन्हें उठाकर अब उसके ऊपर तरह तरह के मंत्र फूके और क्या किए, गौरज लगाए, गाय के पूछ से उनका मंत्र फूक कर उसके सारे जितने भी अपशुगन है वो निकाले, फिर गोबर लगाया गौमूत्र से उनको, फिर अभिषेक किया। तो गौमूत्र व्यक्ति सोचते ही व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, लेकिन यहां पर इतना सब गाय के महत्व के विषय में कहा गया, भगवान का भी अभिषेक गौमूत्र से किया जाता है। और वैसे तब भगवान ने कहा कि हाँ, मेरी रक्षा करने वाला एक गाय है, इसलिए मैं आज से ये प्रण लेता हूं कि मैं गाय की रक्षा करूंगा। और तब से उनका नाम पड़ा गोपाल। और इस तरह यहां पर भगवान कृष्ण गाय के महत्व को रखते हुए वो गोवर्धन के श्रेय को बढ़ा रहे हैं और बता रहे कि हम सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जितनी भी कुछ सामग्री बनाए हैं सभी कुछ गोवर्धन के लिए लाया जाए, जो कुछ इंद्र के लिए बनाया कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो इंद्र के लिए बनाया उसी पैराफेनेलिया को यहां पर अर्पण करना है। तो जो भी कुछ बनाया सभी कुछ लाते थे। और वैसे कृष्ण स्वयं कहते थे, देखो इंद्र इतने साल तक खाया कभी प्रकट हुआ है क्या? लेकिन गिरिराज स्वयं प्रकट होकर खाएंगे। तो वैसे जितने भी बस अन्न का बस कूट बन जाता था, अन्न कूट जो है वो पर्वत के शिखर को कहते हैं, तो वो जो पर्वत का शिखर बन जाता था केवल अन्न का, और सभी लोग अपने अपने घर से व्यंजन बनाकर लाते थे, और जितने लाते थे सब खा लेते थे, और कहते थे अनि और, तो और लाते थे और कहते थे अनि और। तो ऐसे करते करते यहां पर भगवान कृष्ण ने, मुनों ने गोवर्धन को, गोवर्धन की पूजा की महिमा को बढ़ाते हुए सभी का ध्यान इंद्र से हटाकर गिरिराज के प्रति कर दिया। और वैसे सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री शुक उवाच कालात्मन भगवत सकृत दर द्रुप जिघांसया प्रोक्तम निश्चयम नंदाय साधवा अग्रनंद तत्व्रच। तो कहते हैं काल आत्मा भागवत, भगवान के आज्ञा के अनुसार उन्होंने क्या किया, काल आत्मन इंद्र के यज्ञ का ध्वंस कर दिया, इंद्र के यज्ञ को समाप्त कर दिया। सकृत द्रुप जिघांसया, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा इंद्र के अंदर गर्व भरा हुआ है, तो उस गर्व को मुझे तोड़ना है। तो भगवान सब कुछ सह सकते, लेकिन भक्त के अंदर जब गर्वता या घमंड आता है, दर्प आ जाता है, तो भगवान सह नहीं पाते, और उसे तुरंत ही निकालने के लिए तुरंत उपाय बनाते हैं। इसी प्रकार नारद मुनि के अंदर भी गर्व आ गया, तो भगवान ने तुरंत उनका उपाय बना लिया। और वैसे ही उनके भक्तगण के अंदर भी जब गर्व आता है तो भक्त भी सह नहीं पाते। जैसे वासुदेव विप्र, वासुदेव विप्र जब कुष्ठ रोग से पूरी तरह पीड़ित थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए। हालांकि वासुदेव विप्र की ऐसी अवस्था थी कि उनके शरीर में केवल कीड़े रेंगते थे, तो कभी कभी कीड़ा नीचे गिर जाता था, तो उसे उठाकर वापस अपने शरीर पर रखते थे कि ये जीव का अन्न मुझसे छूट रहा है, मैं उनका अन्न हूं, तो ये जीव नीचे गिरकर उनका अन्न छूट रहा है, तो वापस उठा के रख देते थे। और इतनी बदबू मारते थे कि लोग उसके बगल में नहीं रहते थे, ऐसे पूरी तरह उनकी अवस्था हो गई थी। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा कि वासुदेव विप्र जब मूर्छित होकर गिर पड़ा है, तो वापस आकर उनको आलिंगन करते, और जैसे ही आलिंगन करते हैं तो वासुदेव विप्र जो कि पूरी तरह पीड़ित अवस्था से छूट कर वापस उनका शरीर युवा अवस्था में बदल जाता है और एकदम सुंदर बन जाते हैं। और जैसी यह सुंदर अवस्था जब हो जाती है तो वासुदेव विप्र के हृदय में घबराहट उत्पन्न होता है, अरे क्या हो गया, कि हे महाप्रभु आपने, आपकी कृपा से तो मेरा सारा क्लेश चला गया, लेकिन एक बात से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या, कि कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। तो जब व्यक्ति जब शारीरिक स्तर पर आता है तो उनके अंदर गर्व उत्पन्न होता है, दर्प। जैसे दामोदर हरि प्रभु एक बार बता रहे थे दर्पण, हाँ, जो दर्प यानी कि क्या, दर्पण यानी कि जिसको देखकर व्यक्ति के हृदय में दर्प उत्पन्न होता है, दर्प यानी कि घमंड। तो आईने को देखकर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ये शरीर हूं, मैं पूरी तरह, बहुत अच्छी तरह मेरे पास ये शरीर है और मेरा शरीर मस्त है, जैसे ये सोचता है तो उसी समय व्यक्ति के अंदर गर्व आ जाता है। इसीलिए जो कि ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में बताया गया है कि व्यक्ति को केवल इतना ही आईना होना चाहिए, केवल तिलक लगाने के लिए बस, और कुछ नहीं। तो वैसा जब गर्व उत्पन्न होता है तो भक्त भी डरता है। एक बार की बात थी कि तुलसीदास और सूरदास दोनों वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, दोनों जन चर्चा कर रहे थे, भगवान के यशोगान को गा रहे थे। अब भक्त जब एक दूसरे से मिलेंगे तो यही चर्चा करेंगे, तो चर्चा कर रहे थे कि सूरदास, तुलसीदास बता रहे थे कि राम भगवान कितना श्रेष्ठ है, और यहां पर सूरदास कृष्ण भक्ति की महिमा को बता रहे थे। तो दोनों जन अपनी अपनी महिमा बताते हुए जब जा रहे थे तो अचानक कुछ ब्रजवासी सामने से भाग के आने लगे। अब इन लोग गोवर्धन की परिक्रमा ही लगा रहे थे, तो कुछ ब्रजवासी सामने भाग कर आए और कहने लगे, चलो चलो भागो यहां से, तो बोले क्या बात है, पागल हाथी आ रहा है। बोला अच्छा, तो सूरदास दाएं बाएं देखने लगा कहां जाएगा, भागना है। तो तुलसीदास कहने लगे, अरे कहां भाग रहे हो, नहीं नहीं मुझे भागो यहां से, फिर बाद में बात करते। और सूरदास तो भागे, तुलसीदास कहने लगे, अरे अभी तुम्हारा कृष्ण भक्ति कहां गया, तुम्हारा कृष्ण कहां गया। तो सूरदास तो सुने नहीं, सीधे भाग के पेड़ पे चढ़ गए। अब तुलसीदास पूरी तरह विश्वास कर रहे थे कि रामचंद्र जी मेरी रक्षा करेंगे, और ऐसे सोचकर वो सीधे चलने लगे। और चलते हुए सामने आ गया हाथी, और ऐसे पागल अवस्था में था कि बस बड़े रफ्तार से भागकर आया और एकदम उसके सामने आया, उसके बाजू से निकल गया। और जैसे ही चला गया तो सब कहने जय जयकार करने लगे, तुलसीदास की जय हो, जय हो, तुलसीदास की जय हो। फिर सूरदास उतर के आए तो सूरदास को कहने लगे, अरे बड़े बड़े डिंगे मार रहे थे, भक्ति ऐसी होती है वैसी होती है, भगवान रक्षा करता है, अब कहां चला गया तुम्हारा भक्ति। तो सूरदास कहने लगे, मैं तो ये जंगली हाथी से, ये माता हाथी से तो डरकर भाग गया, मैं तो ये माता हाथी से बचा, लेकिन तुम जो कि पूजनीय हाथी के पीछे चक्कर में पड़ गए हो, अब मैं चला। यानी कि अब पूजा रूपी हाथी में फंस चुके हैं। सभी लोग क्या करने लगे, उनका जय जयकार करने लगे। प्रेस्टीज, अब तुम्हारा प्रेस्टीज बढ़ गया है, प्रेस्टीज रूपी हाथी में तुम फंस चुके हो, मैं तो ये पागल हाथी से बच गया। यानी कि क्या, सूरदास बड़े बुद्धिमान थे, क्योंकि सूरदास सोचने लगे कि अगर मैं इस हाथी के सामने खड़ा रहूंगा तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मान अभिमान के हाथी के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। और वैसे तुलसीदास को छोड़ के आगे निकल गए, क्योंकि सब जय जयकार कर रहे हैं, उनको घेर लिया। तो वैसे भक्त जो होते हैं बड़े चतुर रहते हैं, कि वो हमेशा सावधान रहते हैं कि इस दर्प से उसे बचते रहे। और यहां पर प्रोक्तम निशयम नंदया साध्वे अग्रणंत तत्वच, तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा वैसे सारे जितने भी ब्रजवासी हैं सब मान लिए, और पूरी तरह गोवर्धन की पूजा होने लगी और बड़े अच्छी तरह होने लगी। अब यहां पर गोवर्धन की पूजा होने के बाद गायों को ब्राह्मणों को आगे रखकर भगवान कृष्ण अपने सारे गोपों के साथ, गोपियों के साथ सभी लोग उनका परिक्रमा करने लगे। वो आज के दिन हुआ, इसलिए आज के दिन कई लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और ऐसे परिक्रमा करने के बाद दूसरे दिन इंद्र को जब खबर मिला कि ये ब्रजवासी ने अज्ञानता पूर्वक एक अज्ञान बालक की बात को सुन लिया, एक साधारण बालक की बात को सुन लिया और मेरी पूजा बंद कर दी, ये तो ठीक नहीं किया। गन्नम संफर्त कम नाम मेघा नाम चंत कारिणा इंद्र प्रोचत क्रोध वक्षे चासे मानी उता। तो उन्होंने कहा, सुनो संभार तक। तो संभार तक कहने लगे, जी सरकार, मेरा यह आदेश है कि गोवर्धन में जितने भी ब्रज मंडल में जितने भी लोग हैं सब पर तुम संभार तक वर्षा को बरसाओ। और इस प्रकार क्रोध में आकर इंद्र अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इंद्र प्रोच्चत क्रोध, वो क्रोध में आ गए। अब क्रोध ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति का ही नुकसान करता है, अपने जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका ही नुकसान होता है। एक क्रोध, जैसे कि एक माता थी, वो माता ने पड़ोस में खूब झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद वापस आई, अपना उनका बच्चा रो रहा था तो उनको दूध पिलाने लगी। अब जब दूध पिलाने लगी, कुछ ही क्षण के बाद पता लगा कि बच्चा मर गया। बोला, अरे ये कैसे हो गया, अभी तो वो अच्छा खासा था, अचानक कैसे मर गया। तो गए हॉस्पिटल में लेकर गए, सब चेकअप वगैरह किया, पोस्टमार्टम किया, तो पता लगा दूध के अंदर जहर था। बोला तो जहर कैसे आया, ऐसे कैसे हुआ? तो पता लगा कि जब ये माँ ने जब अपने बच्चे को जब दूध पिला रही थी तब उस समय वो क्रोध में थी। तो जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तो उनके शरीर से एक एसिड निकलता है, वो टॉक्सिन एसिड निकलता है, और वो टॉक्सिन एसिड वो दूध में मिश्रित हो गया और दूध में मिश्रित होकर बच्चे को मार डाला। तो ये जो क्रोध होता है हमारे शरीर को ही नुकसान करता है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे विधि है कि पुजारी जब अल्टर में जा रहे हैं तो उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो फिर वापस स्नान करके आना चाहिए क्योंकि दूषित हो गया। तो वैसा जो क्रोध है वो क्रोध व्यक्ति का ही नुकसान करता है। और यहां पर इंद्र क्रोधित हो गया, भगवान से बढ़कर कौन क्रोधित हो सकता है? क्रोध में भी सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है। जैसे एक समय जब श्रील प्रभुपाद जी के पास पति पत्नी आए और पति पत्नी आकर अपना कंप्लेन सुनाने लगे, प्रभुपाद हमारा हमेशा झगड़ा होता रहता है, आप बताओ क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहने लगे कि अपने घर पर नरसिंह भगवान का बड़ा फोटो लगाना। तो ये पति ने पूछा, तो प्रभुपाद हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा क्या? तो बोले नहीं, क्रोध खत्म तो नहीं होगा, जब तुम्हें क्रोध आएगा तो तुम जब नरसिंह भगवान का दर्शन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा मेरा तो भगवान नरसिंह के सामने कुछ क्रोध ही नहीं है, मेरा क्रोध उसके सामने फीका है, और यह देखकर तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाएगा। और ऐसे भगवान जो कि क्रोध के भी क्रोध में भी सर्वश्रेष्ठ है, अब उनके सामने यहां पर इंद्र क्रोध दिखा रहे। अब क्या क्रोध दिखाएंगे देखिए, तो क्या कहते हैं, वाक्यानाम चस्य मानतुम, वो कहने लगे, अब ये शब्द कहने लगे, क्या कहने लगे, च ईशा मानी उत, अपने आप को ईश्वर समझकर, इंद्र अपने आप को ईश्वर समझकर ये शब्द कह रहे। अब इंद्र सोच रहा है कि मैं सृष्टि को प्रलय में डुबाने के लिए मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मैं सबका भरण पोषण करता हूं, आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द डिस्ट्रॉयर। जब उस समय की बात थी जो कि श्रीमद् भागवतम में यही विचार इंद्र के अंदर आ गया था, ऐसे ही विचार। जब परीक्षित महाराज को 7 दिन में जब श्राप मिल गया था कि तुम मारे जाओगे, 7 दिन में एक तक्षक नाक आकर तुम्हें धस लेगा, तब उस समय उनका जो पोता था जन्मेजा, तो उनको जब एक खबर मिला कि एक सांप आके डसने वाला है परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने क्या किया, पुरोहित को बुलाकर ऐसा यज्ञ हवन किया कि जितने भी सर पे सारे यज्ञ कुंड में बस अपने आप को समाविष्ट कर रहे थे, सभी लोग वशीभूत होकर उस अग्नि कुंड में अपने प्राण को गवा रहे थे, ऐसे ऐसे मंत्र फूंक रहे थे, कई सर्प आकर उसके अंदर स्वाहा हो गया। तब उस समय जन्मेजा ने कहा, ये तक्षक नाक क्यों नहीं आ रहा है? तो पुरोहित ने जब ध्यान लगाया तो पता लगा, तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि इंद्र ने तक्षक नाग को शरण दिया है, और तक्षक जो है इंद्र के आसन को लपेट के बैठा है। तो जन्मेजा ने कहा, ऐसे मंत्र को फूको कि इंद्र सहित तक्षक नाग की सन्नि में स्वाहा हो जाए, और ऐसा मंत्र फूका कि इंद्र भी डगमगाने लग गया, वो चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इंद्र स्वयं वो अग्नि में बस अभी स्वाहा होने वाला था कि ब्रह्मा जी ने आके रोक दिया, बोला ये सब बंद करो, कई सांप की योनि इसलिए आज के तारीख में कम दिखते, क्योंकि उस समय कई सांप की योनि को इस प्रकार जन्मेजा ने स्वाहा कर दिया। तो वैसे इंद्र अभी यहां पर अपने आप को ईश्वर समझ रहे, और ईश्वर समझ कर वो जो ईश्वर जो कि तक्षक नाग को शरण देने वाले, वैसे ईश्वर का भी जीवन का कोई गारंटी नहीं है। अब वो स्वयं यहां पर कह रहे संभार तक, पूरे व्रत भूमि को प्रलय में डुबा दो। वाचलम बालिश स्तंभ अज्ञान पंडित मानिना कृष्ण मृतम उपाश्रित्य गोपा में चक्रूर अप्रियम। तो कहने लगे वाचालम बालिशम, अरे ये लोग किसी बालक के वाणी को सुनकर वाचानम बालिशम स्तंभम, ये सभी लोग ये भूल चुके कि किसको प्रणाम करना चाहिए। अज्ञान पंडित मानिना, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है ये लड़का। कृष्ण मृतम उपाश्रित, ये तो कृष्ण तो एक साधारण लड़का है। गोपा में चक्रूर अप्रिय, ये क्रिया इन लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे लिए अप्रिय वाली बात है। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा। अब इसी बात को लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये समझाते कि कैसे इंद्र ने जो कहा वो सत्य है। ये क्योंकि जो सरस्वती, जो सरस्वती की कृपा से व्यक्ति कुछ बोल पाता है, तो इंद्र ने जो भी कुछ बोला वो भी भगवान की सेवा ही होगा, क्योंकि सरस्वती भगवान की सेविका है, तो वाणी कुछ बोलते तो वो भी सेवा में लगता है। तो इंद्र ने जो कहा वो भगवान की स्तुति कैसे हुई? तो कहते हैं वाचालम बालिशम, ये बालक के वाणी को कोई भी, ये बालक के वाणी को कोई भी सुनता है, मूर्ख व्यक्ति भी पंडित बन जाता है। वाचालम बालिशम, वो व्यक्ति बड़ा पटु बन जाता है वाणी में। ये बालक बालिशम जो होगा वो भी बड़ा पटु बन जाएगा अगर ये कृष्ण के वाणी को अगर सुनता है तो। स्तंभम, और ये जो बालक की क्या स्थिति है, ये किसी को प्रणाम नहीं करता। वो तो सही बात है, भगवान क्यों प्रणाम करेंगे? भगवान जो कि सबके मालिक है, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है किसी को प्रणाम करने का। अज्ञान पंडित मानिना, और वैसा व्यक्ति अज्ञान जिसको और कुछ ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसे पंडित मानिना, ऐसे पूजनीय व्यक्ति को बड़े बड़े पंडित मानते हैं। कौन? सरस्वती अर्थ इस प्रकार है, सारस्वत अर्थ। और इस प्रकार इंद्र यहां पर कुपित होकर कह रहे हैं कि जाओ, जाकर डुबो दो पूरा व्रज भूमि को, और मैं आ रहा हूं ऐरावत हाथी में बैठ कर आ रहा हूं। और ऐसे जोर से वर्षा गिरी 7 दिन 7 रात। जब शुरू ही हो रहे थे वर्षा, तो सारे व्रज भूमि के जितने भी वासी थे सभी लोग घबरा गए, पूरा अंधकार छा गया, बादलों ने पूरा अंधकार को छुपा लिया, और सारे ब्रजवासी सब घबरा कर क्या कहने लगे? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुम अर्हसि देवाना कुपी तद भक्त वत्सला। तो कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, त्वं नाथ गोकुलं प्रभु, एकमात्र आप ही हमारे नाथ हो। अब ब्रजवासी ने कृष्ण का शरण क्यों लिया? क्या उन्हें पता था कि कृष्ण भगवान है? नहीं। तो फिर यहां पर कृष्ण के पास क्यों गए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में बताते हैं कि सारे ब्रजवासी ने गर्ग मुनि से, उनका जब जन्म कुंडली जब बनाया गया था तब उस समय गर्ग मुनि से उन्होंने सुना था कि गर्ग मुनि ने कहा था कि अन्येन सर्व दुर्गानि यूयम अंजस्तरिष्यत। तो अन्येन सर्व दुर्गानि, जितने भी सारे परेशानी है व्रज भूमि के, सारे परेशानी को तरिष्यत, इसको पार लगाने वाले वो केवल एकमात्र गोप बालक कृष्ण है। तो सब जान गए थे, वो याद रखे थे, सबको याद आ गया कि हाँ ब्रज भूमि में समस्या आ गई है, अब समस्या आ गई है तो कृष्ण के पास दौड़ेंगे। तो यहां पर सारे भक्त होने के बाद भी सबके जीवन में समस्या आई, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बस मैं माला कर रहा हूं, हरे कृष्णा कर रहा हूं कई साल से, तिलक लगा रहा हूं, घंटी माला पहन रहा हूं, कई नियम फॉलो कर रहा हूं, फिर भी समस्या आ रही है, ये ठीक नहीं है। तो कभी कभी ऐसे सोचकर वो फिर भक्ति के पटरी से उतर जाता है, बोला ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए भगवान के भक्त के जीवन में तो समस्या आती है, चाहे व्यक्ति शुद्ध भक्त भी बन जाओ, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी, लेकिन समस्या का हल कैसे निकाले ये भक्त अभक्त के अंतर भेद है। भक्त जो होता है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान का शरण लेते हैं, तो भक्ति करने के द्वारा भी समस्या आ सकती है। यही मैं जब वसई में जब लेक्चर दे रहा था तो एक भक्त ने एक इसी प्रकार का प्रश्न किया, नया नया आया था, तो उसने यही प्रश्न किया कि अगर कृष्ण की भक्ति करने के बाद भी दुख समस्या आएगी तो क्यों करें, क्या जरूरत है करने की। तब उसके उत्तर में मैं ये समझा रहा था कि कृष्ण की भक्ति करते हुए भी समस्या आएगी, लेकिन समस्या का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। ले कैसे, तो जैसे मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को अगर कुछ ऑपरेशन करना रहता है, ऑपरेशन करना रहता है, तो वो क्या करता है, पहला एनेस्थेसिया देता है। एनेस्थेसिया जो है वो उस स्थान के दर्द को खत्म कर देता है ना। ठीक इसी तरह जो भगवान की जो भक्ति है वो क्या है, एनेस्थेसिया है। वो ऐसा हमारे जीवन में उस दुख के दर्द को पूरी तरह सुन्न कर देता है। दुख आकर कब जाता है पता भी नहीं लगता है। जैसे भीष्म पितामह तीरों की सैया में लेटे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत होने के कारण उनको शारीरिक वेदना नहीं था। तो जो दुख पीड़ा से अगर बचना है तो उन्हें ये इंजेक्शन की आवश्यकता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस एनेस्थेसिया, जिससे व्यक्ति अपने दर्द को दूर कर सकते। तो ऐसे दर्द को दूर करने के लिए सभी लोग दौड़ लगाए कृष्ण के पास, और जब कृष्ण के पास गए तो क्या कहते हैं, तत्र प्रतिवी सम्यग आत्मयोग साधये लोकेश मानिनम मौध्यात धनिष्य श्री मधम तमा। तो यहां पर भगवान ने जब ये दृश्य देखा तो भगवान समझ गए ये कोई और नहीं है, ये कौन है, ये वही है इंद्र। ये इंद्र के कारण यहां पर सारी समस्या आ रही है, इंद्र इसके मूल जड़ है। क्यों, क्यों? तो कहते हैं तो यहां पर कहते हैं कि स्त्री मदम तमा, अपने आप को गर्वित अवस्था में वो पड़ गए। कौन से गर्व अवस्था, गर्व आने का क्या कारण है, स्त्री यानी कि बहुत संपत्ति उनके पास आ गई है। तो धन ऐश्वर्य ये भी व्यक्ति को गर्वित अवस्था में डाल देता है, धन ऐश्वर्य, अच्छा पंडित, पंडित कुल में जन्म लेना, सुंदरता, ये जो कुंती महारानी कहते हैं ये जो चार चीज जो है ये व्यक्ति को गर्व उत्पन्न कराता है। तो वैसे यहां पर इंद्र के अंदर ये गर्व आ गया है, तो मुझे इस गर्व को कम करना पड़ेगा। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को ही है, उसका जब उनका जब डिवोटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मेन डॉक्टर वही है, तो वो अभी डॉक्टर अभी मरीज का इलाज करेंगे, तो वो समझ गए ये इंद्र नहीं है, इंद्र के साथ और भी पेशेंट लोग हैं। तो वो क्या कह रहे, तो कहते हैं लोकमानिनम मूढ़ाया, ये केवल एक इंद्र का समस्या नहीं है, इंद्र के साथ और देवता गण का भी समस्या है, जैसे कि वायु इत्यादि और लोग भी अपने आप को ईश्वर समझते, तो इन लोगों को भी मुझे सुधारना होगा। और ऐसे सोचकर वो इंद्र की तरफ अपनी दृष्टि डाली, तो भगवान ये समझ गए कि इंद्र को अपने बल का बड़ा गर्व है। इसलिए कहा गया है स्थान प्रधान न बल प्रधान, व्यक्ति का जो स्थान जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, बल महत्वपूर्ण नहीं होता है। कौन कितना बलशाली है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका स्थान क्या है, वो अब किस अवस्था में है, यह महत्वपूर्ण है। जैसे पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन जब किया जा रहा तो सारे देवी देवताओं को बुलाया गया था, नारायण को भी बुलाया था, तो उसमें शिव जी भी आए थे, और शिव जी के बाद फिर भगवान नारायण अपने गरुड़ के साथ आए। तब उस समय शिव जी के गले में जो सर्प था वो गरुड़ जी को हुस कर रहा था, उसको उसको चैलेंज कर रहा था। यहां पर शिव जी के गले का जो सर्प था वो गरुड़ जी को तो गरुड़ जी कहने लगे अच्छा एक बार वो गले से तो उतर के दे फिर मैं तुम्हारा कहता हूं फुस, फुस। तो यहां पर जो सर्प था वो शिव जी के गले में था, स्थान प्रधान न बल प्रधान। वो नाग का क्या बल है गरुड़ जी के सामने, कुछ नहीं है। लेकिन उसका महत्वपूर्ण कहां उसकी शक्ति थी, उसकी मुख्य जो प्रधानता थी उनके स्थान का, वो स्थान कहां है, वो था शिव जी का शरण। तो वैसा व्यक्ति अगर अपने बल को भगवान के सामने या माया के सामने दिखाएगा तो फिर फुसफुस हो जाएगा। तो उसका वास्तविकता और स्थान महत्वपूर्ण है कि ये कौन से स्थान में है। यहां पर इंद्र ऊंचे, यहां पर इंद्र बड़ा बलशाली दिख रहा है, बहुत मैं बलशाली हूं, इंद्र की ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन जितने भी ब्रजवासी थे सब वो सब ऐसे दिख रहे थे कि ये छोटे मोटे जनरल लोग हैं। तो यहां पर स्थान जो था वो महत्वपूर्ण था, बल महत्वपूर्ण नहीं है। इंद्र का बल भले ही दिखाई दे रहा है लेकिन इंद्र का बल कृष्ण के सामने कुछ नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के भक्त के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि सारे भक्त लोग ने कौन सा स्थान चुना है, कृष्ण भावनामृत। तो ये यहां पर जैसे कि कहते हैं जो जाके शरण लिए ताको लाखी लाज, उल्टा जल मछली चले भऊ जाए गजराज। जिसने जिसका शरण लिया है वो व्यक्ति का कर्तव्य उसकी रक्षा करना, तो उल्टा जल मछली चले, जो मछली जो होता है वो पानी के विरुद्ध काट कर निकल सकती है। उल्टा चल मछली चले भू जाए गजराज, लेकिन पानी के वेग को हाथी नहीं संभाल पाता, हाथी भी भय जाता है। तो हाथी भयने का कारण क्या था, क्योंकि हाथी ने पानी का शरण नहीं लिया। लेकिन जो मछली जो कि कुछ दिखाई नहीं देता कि वो मछली ताकतवान है या कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जल का शरण लिया है तो बड़े आसानी से काट के निकल जाती है। पानी के वेग को काट के निकल सकती है, मछली के पास शक्ति है क्योंकि उन्होंने शरण लिया। वैसे ही जीव जब भगवान के शरण को लेता है तो वो माया के वेग को भी काट के निकल सकता है। अन्यथा जो व्यक्ति अपना बल दिखाएगा माया के सामने तो वो व्यक्ति माया के साथ भय जाएगा। तब इंद्र ने सोचा, कृष्ण ने सोचा कि इंद्र के लिए कुछ इलाज खोजना पड़ेगा। कहते हैं नहीं शत भव युक्ता नाम सूरा नाम ईश विस्मया मथोस्थम मान भंग। तब उन्होंने सोचा कि अब इनके मान को भंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी देवी देवता है मेरे सेवक हैं, और देवी देवता जो कि सत्वगुण में रहते हैं तो उनके अंदर ऐसी अभिमान आना उचित नहीं है, और ये शोभा नहीं दे रहा है इंद्र के अंदर और अन्य देवताओं के अंदर, इसलिए मुझे कुछ कदम उठाना होगा, मुझे उन्हें नम्र बनाना होगा। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता को ग्रहण करता है तो बड़े बड़े संकट को बड़े आसानी से लांग सकता है, उसके लिए बड़े बड़े पर्वत भी उनके लिए केवल राय के समान बन जाता है। तो जो भव सागर को अगर पार करना है तो उसे विनम्रता को प्राप्त करना चाहिए। जैसे सार्वभौमा प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि मैं जब यहां से भारत से जब विदेश गया प्रचार के लिए, तो वहां पर जब गया तो वहां पर मैं जब अपना पेटी खोला तो प्रसाद निकाला तो उसमें बहुत सारी चीटी थी। तो ये कहने लगे कि देखिए मैं भारत से विदेश आया तो कितनी कार्रवाई हुई, बहुत सारे पूछताछ हुए, तुम कौन हो, कहां से आयो, किस लिए आयो, कितने दिन रुकोगे, कब जाओगे, क्या तुम्हारा काम है, बहुत सारे पूछताछ हुए। मैं केवल अकेला आया, लेकिन ये चीटी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, और ये चीटी अकेले ने पूरा ज्वाइंट फैमिली के साथ आया और बिना वीजा का, बिना टिकट का। तो वो कहने लगे कि देखिए अगर कोई छोटा बन जाता है तो बड़े आसानी से भव सागर को लांग सकता है। चीटी बन गया तो उन्होंने समुन्दर पार करके विदेश चला गया। तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने जीवन में जब छोटा के भावनाओं को या विनम्रता को प्राप्त करता है तो बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। और इसलिए इंद्र का संकट बाद में टला जब इंद्र जब विनम्रता के आश्रय को ग्रहण किया। और यहां पर इंद्र को विनम्र बनाने के लिए, अन्य देवी देवताओं को विनम्र बनाने के लिए यहां पर भगवान ने क्या कहा, तस्मान मच्चरणम गोष्टम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात् स्व आत्मयोगे न स्वयं मे वृत अहित। तो कहने लगे कि जितने भी मत चरणम, जो कोई मेरे शरण को ग्रहण किए है, गोष्टम मेरा घर, मननाथम मेरे जितने भी नाथ, मत परिग्रहम मेरे परिवार के सारे सगे संबंधी, तो ब्रजवासी जितने भी थे सभी कृष्ण के संबंधी बंधु है, गोपाय स्व आत्मयोगेना मैं अभी अपने दिव्य शक्ति के द्वारा सबकी रक्षा करूंगा। और ऐसे कहकर भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि स्वयं मैं व्रत अहिता, क्योंकि मैंने यह व्रत लिया है कि मैं हमेशा अपने भक्त की रक्षा करूंगा। कौनते प्रति जानेति नामे भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान ये सोचे कि मैं अगर व्रत लूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये तो अपना व्रत तोड़ देता है, ये छलिया है, इसलिए भक्त के वाणी को कभी असत होने नहीं देते। इसलिए यहां पर कुंती पुत्र को कह रहे अर्जुन तुम करो ये ऐलान। और वैसे ही व्रत भगवान लेते हैं कि जो कोई एक बार भी मेरे पास आता है मैं उसको जीवन भर तक अभय प्रदान करता हूं। जब उस रामायण में जो लीला का वर्णन आता है कि जब उस समय की बात थी कि जब विभीषण आए थे प्रभु रामचंद्र जी से भेंट करने, तब उसी समय प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सारे वानर सेनाओं को पूछने लगे कि विभीषण आ रहा है, क्या कारण होगा? तो अंगद कहने लगा ये हमारे शत्रु का भाई है, हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो अंगद कहने लगा नहीं प्रभु रामचंद्र जी, ये ठीक समय पर यहां पर नहीं आ रहा है, तो हमें जानना चाहिए कि ये कुछ राजनीतिक तौर से कुछ कूटनीति भरा है इसलिए आया है। रामचंद्र जी इनके प्रश्न के उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए, हनुमान से पूछा हनुमान विभीषण आ रहा है क्या कारण होगा? तो हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु पूरे संसार का एकमात्र, पूरे संसार के जीव का एकमात्र उद्देश्य आपके शरण को ग्रहण करना, और यहां पर विभीषण आए हैं तो आपके शरण को ग्रहण करना। तो हे प्रभु मेरे हिसाब से विभीषण आपकी शरणागति को ग्रहण करने आया। प्रभु रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह हनुमान मैं तुम्हारे प्रश्न से उत्तर से अति प्रसन्न हूं। और फिर अन्य वानर सेनाओं को कहने लगे क्या तुम लोग इतना नहीं जानते कि मेरे एक भ्रुगुटी उठाने से, मेरे केवल एक अंगूठे से मैं पूरे संसार का ध्वंस कर सकता हूं, ये रावण मेरे लिए क्या कर सकता है। और तब उस समय वो कहने लगे, विभीषण जब आकर उनको जब प्रणाम किए तब कहने लगे, सकृते व प्रपन्नो यस्तव अस्मिति इति याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम् मम। ये मेरा व्रत है, जो कोई व्यक्ति एक बार भी सकृदेव प्रपन्नो यस एक बार भी आकर प्रणाम करता है, तब इति याचते और ये कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, और जब ये याचना करता है मैं उसको अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको जीवन काल तक जन्म जन्मांतर तक उसको अभय प्रदान करता हूं। दतामि एतत् प्रथम ममा, ये मेरा व्रत है। तो वास्तविक में अगर जीवन बीमा लेना है तो प्रभु रामचंद्र जी से ही लीजिए, बाकी सब फेल है। तो वही एकमात्र इंश्योर्ड कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी केवल राम का ही चलता है, बाकी सब दिखावा है। और यहां पर वही प्रभु रामचंद्र जी बता रहे हैं कि वही कृष्ण अब यहां पर कह रहे हैं, व्रतम अहिता, ये मेरा व्रत है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। और उन्होंने क्या किए, फिर गए और सीधे जाकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति युक्त्वैकं हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचल दधार लीलया विष्णु चत्राकम इव बालक। जैसे एक बालक जाकर वो कुकुरमुत्रा, कुकुरमुत्रा कहते हैं ना, वो जो छतरी जैसा होता है मशरूम, जैसे बालक जाकर उसको उठा लेता है, वैसे ही भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया छोटी सी उंगली, और उठाकर क्या कहने लगे, तो यही कहने लगे कि सारे लोग आ जाइए, अगर अपनी स्व इच्छा से सभी लोग यहां पर आ सकते हैं और यहां पर मैं तुम लोगों को आश्रय प्रदान करूंगा, भय मत करो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, एक बार आइए। इसी बात को भगवद गीता में कहते हैं, कहां पर क्या है श्लोक, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा सुचा न सुचा। वो कह रहे कि तुम ये चिंता मत करो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, समस्त प्रकार के तुम्हारे पाप से मैं तुम्हें धो दूंगा, केवल मेरी शरणागति को ग्रहण करो। और वैसे ही कृष्ण यहाँ पर सारे ब्रजवासियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने सारे ग्वाल बाल सभी के साथ, अपनी पत्नी अपने संबंधियों के सभी के साथ आप लोग आओ। और ऐसे उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली में पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। वैसे भगवान 7 दिन 7 रात तक लगातार उन्होंने उनको संरक्षित किए। इंद्र अपना वर्षा बरसाते बरसाते तंग आ गया, फिर वापस सूर्य उदय हुआ और पुनः वो जितने भी जल थे सब सूख गए। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने ब्रजवासी की रक्षा करते हुए उन्होंने इंद्र के गर्व को खत्म किया। फिर उसके बाद में आगे लीला आती है कि किस प्रकार इंद्र स्वयं डर गए भगवान के इस लीला से, वो सोचे कि बस अभी नेक्स्ट नंबर मेरा है, अभी मुझे भगवान को जरूर जरूर डांटेंगे या जरूर मुझे सजा देंगे। और ऐसे सोचकर डर कर उन्होंने सुरभि गाय को आगे रखकर पीछे पीछे गए, क्योंकि वो सोचे कि अगर कुछ बोल भी दिए तो पहला जो क्रोध है सुरभि गाय को देख के ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर उन्होंने कृष्ण के क्रोध को कम करने के लिए सुरभि गाय के आश्रय को ग्रहण किया। देखे गाय कितनी उपयोगी, सभी तरह से उपयोगी है, बड़े बड़े देवतागण उनके शरण लेते हैं, और यहां पर लोग इतने मूर्ख है कि उनको कसाई खाना भेज रहे हैं गाय को। तो इस प्रकार इस लीला के पीछे ये शिक्षा है कि कैसे इंद्र का गर्व खत्म हुआ और गोवर्धन के यश का बड़े यश जो है अतिवृद्ध हुआ। तो यहाँ पर अंततः गत्वा सारे ब्रजवासी पुनः कुशल मंगल में वापस आ गए, और गोवर्धन जो कि स्वयं कृष्ण है, भगवान से अभिन्न है, वैसे गोवर्धन की लीला आज के दिन संपन्न हुई, इसलिए आज हम गोवर्धन लीला मनाते हैं। गिरिराज गोवर्धन की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।